نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير محسن انسانیت اس میں سے ہم مدنی دور کر رہے ہیں اور مدنی دور میں سے آج ہمارا ٹاپک ہے یہود کا شائع اللہ کی طرز عمل اب یہ کیا ہے آپ کو مجھے پتہ ہے کچھ بھی نہیں سمجھ آیا ہوگا یہ شائع اللہ کی طرز عمل کیا ہے اور وہ کیا ہے کسی کو سمجھ آئی ہے یہ بات تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے پیچھے کیا بات تھی ابھی آپ کو پیچھے اللہ پوچھوں گی تو وہ تو سمجھ آیا ہوا ہے نا ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو وہاں حالات کیا تھے اور کس طرح باتوں پہ انہوں نے باتیں کی پچھلے حصے میں ہم نے بہت ساری ایسی گستاخیاں پڑھی ہیں کہ جو انہوں نے ایون قرآن کی آیتوں کے نزول کے موقع پہ بھی کی اور جیسے ابن سوریہ اور فنحاس یہودی کی بات پڑھی تھی کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں کے نزول پر بھی حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں بھی اس طرح کی باتیں کہہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے تو یہاں اب ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ مدینہ میں آنے والے مسلمانوں کا اور کیا اثر جو تھا وہ یہود پہ دکھتا ہے بک سے پڑھتے ہیں یہ تو معلوم ہے عام حقیقت ہے کہ مدینہ کے محدود ذرائع و وسائل پر جب مہاجرین کی روز افزوں کہتے ہیں ہر روز بڑھتی ہوئی آبادی کا بوجھ پڑنے لگا اور بے سرمایہ و بے سہارا لوگ اپنی معاشی زندگی کی تعمیر نو میں آ کر لگے تو تحریک کے بیشتر کارکنوں کے عالم فقر و فاقہ چھا گیا اس امتحان فقر و فاقہ میں خود تحریک کا لیڈر اور اس کے گھر کے لوگ سب عام ساتھیوں کے برابر شریک تھے بلکہ آزمائش میں سے زیادہ حصہ اسی محسن انسانیت کو ملا مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی فقر و فاقہ کی صبر آزمائیوں کو مہاجرین کی بیماری نے دگنا کر دیا نئی آب و ہوا باہر سے آنے والوں کو راسنا آئی اور یکے بعد دیگر سچائی کے نظام کے سپاہی بیمار ہونے لگے بخار کی ایک وبا پھیل گئی اور یہ بخار بڑا ہٹیلا اور موزی ثابت ہوا ناقص غذا کے ساتھ اس نئی بلا نے جس کو نشانہ بنایا اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کے چھوڑ دیا لوگ معاشی تگ و دو کے قابل نہ رہے ایک طرف تحریک کا سفینہ یعنی کشتی مشکلات اور مخالفتوں کے نت نئے گردابوں سے دوچار تھا نوخیز اسلامی ریاست ہر پہلو سے محتاج تعمیر تھی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے طرح طرح کے خطرات تھے افراد کار صاحب فراش ہو رہے تھے صاحب فراش بیمار اور پیٹ بھرنے کو روٹی اور تن ڈھانکنے کو کپڑے کا پورا پورا انتظام نہ تھا اس مرحلے کو چھوٹی سی انقلابی پارٹی نے جس طاقت کے بل پر پار کیا وہ ایمان باللہ مقصد کی محبت اور باہمی جذبہ اخوت کی طاقت تھی یعنی اتنے مشکل حالات تھے آپ دیکھیے آج کل کے ملک جو اتنا کچھ کھاتے پیتے اور اتنے ریسورسز ہیں اس کے باوجود اگر کوئی باہر سے زیادہ لوگ آنے لگے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو مدینہ تو ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا سا گاؤں چھوٹی سی بستی تو جب وہاں لوگ آ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں تو اتنا بھی نہیں تھا کہ لوگ پیٹ بھر کے کھا سکیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ کیسے ہونا تھا اللہ کے حکم سے ایمان والوں نے مشکلات میں پڑ کر اپنے گھر بار چھوڑے تھے تو یہاں آ کر اب تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے یہ بہت تکلیف کی بات تھی لیکن وہ اپنے ایمان کی وجہ سے یہ کر گئے تو کیا پتہ چلا کہ اندر سچا ایمان ہو پھر اپنے مقصد سے محبت ہو اور تیسری چیز اخوت ہو یہ تین باتیں لکھ لیں اللہ پر ایمان اپنے مقصد سے محبت اور آپس میں بھائی چارگی یہ تین چیزیں تھوڑے اسباب کے باوجود بھی انسانوں کو جوڑ دیتی ہیں مشکلات میں کھڑا کرتی ہیں آپ اس کو سوچیں آپ قرآن سیکھنے آتے ہیں اگر آپ اللہ پر ایمان نہ لائیں کہ آپ کو اس کا بدلہ ملے گا آپ کا مقصد نہ کلیئر ہو کہ آپ نے سیکھنا ہے قرآن پڑھنا ہے آپ نے اپنی زندگی بدلنی آگے جانا ہے اور تیسری بات ہے آپ سب میں آپس میں محبت نہ ہو تو آپ کبھی بھی یہ مشکلات نہیں سہ سکتے جو اس راستے میں آتی ہیں گو کہ یہ کوئی بڑی مشکلات نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ لگتی ہیں جن کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے تو مجھے آپ کو اپنا ایمان بڑھانا ہے مقصد کی سچائی چاہیے اور آپس میں محبت کی بھرپور قسم کی فضا ہو دراصل بڑے بڑے تاریخی کارنامے انجام دینے والے افراد اور تنظیموں کی مرکزی طاقت ہوتی ہی ہے ایمان اور اخوت دو لکھ لیں طاقتیں مسلمان کی آپ کہتے ہیں ہمیں ویکنیس ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے کوئی کہتا ہے وائٹامن ڈی کی کمی ہے کوئی کہتا ہے بلڈ کی کمی ہے نہیں اصل میں ایمان کی کمی ہے اخوت کی کمی ہے آج کے مسلمانوں میں اس لیے بھی ہم لوگ وہ نہیں کر پا رہے جو کہ ہمیں کرنا تھا इसी ताकत ने कमजोरों को ताकतवर बनाए रखा और इसी ताकत ने जराए और वसाइल की कमी के असरात को कम से कम तर कर दिया। ताहम नासाजगार हालात के खिलाफ जो कुछ जिद्दोजहद हो रही थी इसे वबाए आम ने बहुत कमजोर कर दिया। और इस दौरान में ये चर्चा भी होने लगा कि मदीना के यहूदियों ने जादू कर दिया है और अब मुसलमान पनप नहीं सकेंगे। हालात कैसे संगीन थे, आइए इसका अंदाजा करने के लिए मोहसिन इंसानियत के चंद रफकाए कार से मिल दिए। आप जो बात हो रही है उसको समझ आ रही है आपको? मैं अपने लफ्जों में बोलूं कि मदीना आने के बाद सहाबा पे जो मुश्किलात आई वो क्या थी और उसका मुकाबला किस चीज से किया? ईमान, मकसद का यकीन और अखुवत। तो अब चंद मिसालें हम पढ़ेंगे कि सहाबा किस तरह मदीना आने के बाद परेशान हुए लेकिन अल्लाह ने उनको थामे रखा। और मेरे आपके लिए इसमें कोई सबक है? बिल्कुल है कि हमारे ऊपर जब भी कोई दीन की मुश्किल आए, कोई आजमाइश आए, तो हम भी इन लोगों को याद करके पूछें कि हम पे इतनी मुश्किलें तो नहीं आई जो उन पे आई हैं, तो इंशाल्लाह फिर हमारा दिल भी थम जाएंगे। सबसे पहले जिक्र किन का है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का। ये भी अजीब शख्स है, हर चीज में आगे। अब देखिए कि अबू बकर को अबू बकर क्यों कहते हैं? नेकियों में पहला, नेकियों का बाप। बकर के लफ्ज से पता चलता है जहां किसी जगह नेकी का कोई मौका आता है सबसे पहले अबू बकर खड़े हैं। बिस्तरे मर्ज पर मारे कर्ब के तड़प रहे हैं और एक शेर में अपने दिली इस्तराब का इजहार कर रहे हैं। कुल उम्रिय मुसब्बहुम फी अहलिही वल मौत अतना मिन शिराकी नालिही। हालत यह है कि अपने लिए मौत को जूती के तस्मे से भी ज्यादा करीब पा रहे हैं। यानी अबू बकर को बुखार हो गया मक्का से मदीना आने पे, मिस करते थे मक्का को, और ये शेर पढ़ रहे हैं कि हर एक तो अपने बस्ती में, तो मैं दूर आ गया हूँ और मौत तो बहुत ही करीब है। और इधर मुलाहिजा फरमाइए, ये सैयदना बिलाल हैं, करवटें ले रहे हैं और दर्द भरी लय में अलाप रहे हैं। यानी शेर पढ़ा करते थे वो, इन्होंने यहाँ लिखे हैं। अला लई तशेरी हल अबई तन लई लतन विवादिन व हौल इस खिरुन व जलील वहल अरिदन्न यौमन मियाह मजन्नतिन वहल जबदून अली शामतुम व तुफैलुन। यानी उनके अशार से ये जौक दिख रहा है कि उनको मक्का से कितनी मोहब्बत थी। असल में ये मक्का की वादियों और चश्मों और पहाड़ों की याद ताज़ा की जा रही है। उस वादी में एक रात गुजार लेने की हसरत का इजहार है। इसमें असखर और जलील नाम की घास उगती हैं, वहाँ मजन्ना के चश्मे का पानी पीने और श्यामा तुफैल नामी पहाड़ियों का मंजर देखने के अरमान उबले चले आ रहे हैं। यानी शेरों में बंदा कब बोलता है, अपने दिल का इजहार कब करता है? जब दिल को चोट पड़ी होती है। तो ये कोई आसान थोड़ी था आज मुझे आपको कि के हाँ देखिए, हम तो अपना घर नहीं छोड़ सकते, शहर छोड़ना तो दूर की बात, और शहर नहीं छोड़ सकते मुल्क छोड़ना तो दूर की बात। मुल्क क्या छोड़ना है, हम तो दुनिया में अपने पाँव को पसारे रखते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं होती। अपना बसा बसाया घर छोड़ के आना, हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपने घर में होते हैं, आरामदेह लगता है, चाहे वो छोटी सी कुटिया हो। वो कहते हैं ना कक्खों की कुल्ली, वो बंदे को मोहल्लों से अच्छी लगती क्योंकि आपकी अपनी जगह है। साहबा ने अपने घर छोड़े और एक दो ने नहीं सैकड़ों ने छोड़े। ये असल में जज्बे इस्लाम के लिए आज भी चाहिए। जब ये जज्बे नहीं है ना तो कुर्बानियां नहीं कर सकते हम। एक और का जिक्र है, ये है आमिर। लबों पर क्या ही बेताब कुन शेर रक्सा है, इन्नी वजदतुल मौत क़ब्ल ज़ुकी इन्नल जबान जतफत मिन फौकी। इनके इब्तलाए बदन, यानी बदन में जो आजमाए गए, इनके इब्तलाए बदन का आलम यह है कि मौत के आने से पहले मौत की आहट सुन रहे हैं। यानी सबको लगता था कि बस अब हमने मर जाना है। इन्नी वजदतुल मौत क़ब्ल ज़ुकी इन्नल जबाना हक्फुहु मिन फौकी। फिर ये हैं हजरत शद्दाद रजी अल्लाह अन्हु। रसूलुल्लाह अपने इस रफीक की इयादत के लिए तशरीफ लाते हैं। मरीज बेकरार रहता है कि अगर बुतहान का पानी पी लेता तो अच्छा हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चले जाओ, कौन रोकता है? मरीज कहता है हिजरत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली के लिए फरमाते हैं चले जाओ, तुम जहां भी होगे मुहाजिर ही रहोगे। यानी जाना भी नहीं चाहते लेकिन याद भी कर रहे हैं। सुलह हुदैबिया पर जब मुसलमान मक्का गए तो उनके बदन बार बार की बीमारियों ने ऐसे चूर चूर कर दिए हुए थे कि अहले मक्का की तरफ से ताने दिए गए और जाओ ना मदीना। इन्हीं तानों का रद्द अमल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के तहत मुसलमान अकड़ अकड़ कर चलते थे। जरा सा यहां बैठ के सोचिए, मक्का से मदीना आज आरामदेह कोचिस में बैठ के जाते हैं, 7-8 घंटे भी लग जाए तो क्या है, एसी भी अंदर और खाना भी पीना, रेस्ट भी है, बीच में नमाजें भी पढ़ते खाते पीते। ये कितना दूर से गए थे, कहाँ थे इनके पास आरामदेह गाड़ियां, कहाँ थे ये सब लोग, लेकिन जज्बे कितने सच्चे हैं। फिर जाके बुखार ना चढ़ता था और क्या होना था। हम तो जहाज में बैठ के पाकिस्तान से आते हैं, हम 8-10 दिन तक अपना दिमाग ही नहीं सीधा कर पाते। सच्ची जो बात है, हम तो इतने ज्यादा मैं कहती हूँ आराम तलब हो गए। अपनी जिंदगी पहले मत कोई किसी को सोचे, अपने आप को सोचे। कहाँ हम अल्लाह के रास्तों में हिजरतें करेंगे, कहाँ हम अल्लाह के रास्तों में कुर्बानियां देंगे। हम तो अभी अपने नफ्स को मोटा किए बैठे, छोटे छोटे अरमानों पे हमारी जान चली जाती है, छोटे छोटे कामों पे हमारी नमाजें चली जाती हैं। क्यों ना अल्लाह इनकी शान बयान करे जिन्होंने हिजरत की। जिसने कभी की हो उसको पता होगा कि अल्लाह के लिए कुछ छोड़ना और मुश्किल सहना और थकना और टूटना और फिर में अंदर से एक सुकून और खुशी का आना, ये कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, वो यहीं से पलट जाए जिसे जहां हो प्यारी। ये मुश्किलों का रास्ता होता है लेकिन अल्लाह आसान उनके लिए करता है जो ये रास्ते से गुजरते हैं। दूर बैठों को तो ये बड़ा मुश्किल लगता होगा, हाय इट्स नॉट पॉसिबल। इन्हीं हालात की बिना पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इन नशान अल हिजरत ही लशदीद, यानी हिजरत का मामला बड़ा संगीन है, ये कोई खेल नहीं है। दिल से कहिए जिन लोगों ने हिजरत की, वाकई फिर उनको महाजरीन होना चाहिए था। जब घर का आराम, घर की चीजें ही छोड़ दी, पीछे क्या रह गया, अकेली जान तो जहां बंदा बैठे बैठ ही जाता है। असल में ये बुत तोड़ने मुश्किल होते हैं, इन्हीं की वजह से फिर इंसान आगे नहीं निकल आते। इस सिलसिले में एक दिलचस्प वाकया पेश आया। एक बद्दू ने आकर सर्वरे आलम के हाथ पर बैत की, लेकिन मदीना आते ही बुखार ने आ लिया, और मदीना में उन दिनों में कुछ ऐसी वबा भी थी फैली हुई। खैर, इसने इसको इस्लाम की बदशगुनी करार दिया और इसरार करके बैत खत्म कराई और चला गया। इस वाक्य पर आपने फरमाया, मदीना सुनार की भट्टी है, खोट मैल को उगल देती है और जर्रे खालिस को अलग कर देती है। ये बुखारी की रिवायत है। यदि वो इस्लाम दे के चला गया, डिक्लेरेशन दे गया कि मुझे नहीं करना भाई, मेरे से नहीं होता, तो आप किस काम के हैं? आपका नसीब में नहीं तो कौन आपको दे सकता? याद रखिएगा, जिन लोगों के नसीब बड़े होते हैं ना, अल्लाह ताला उनके लिए बहाने बना लेता है। और जो इस तरह के लोग हैं, अब आप देखिए, वो मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए और ये मदीना में रहकर बुखार को बर्दाश्त नहीं कर सके, इस्लाम छोड़ के चला गया। कहता ये मनहूस है या बदशगुन है या मुझे ये इस्लाम रास नहीं आया। तो ये हौसलों की बातें हैं। ये मांगना चाहिए अल्लाह से कि रब्बन ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तहरीकों के कार्य अजीम के लिए जो लोग उठते हैं, इनको कदम कदम पर ऐसे मराहिले इब्तला यानी मुश्किल मरहले पेश आते हैं जिनको पार वही कर सकता है जिसके पास ईमान का जरे कामिल यार मौजूद हो। यानी खरा ईमान, सच्चा ईमान होता ना, फिर दिन की रास्ते की मुश्किलें मुश्किलें नहीं लगती बल्कि अच्छी लगती हैं। कोई बात नहीं, और आ जाएं जितनी आनी है। खोटा माल किसी न किसी मरहले में अलग हो जाते, इसको हाईलाइट कर लें। और याद रखे, बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों को अपनाना, ये भी तो हिजरत है ना। गुनाहों को छोड़कर नेकियों का शौक आ जाना, ये भी तो हिजरत है ना। तो मुझे आपको भी बहुत डरना चाहिए, मत सोचें कि हम बहुत बच गए हैं। किसी वक्त नहीं बचे, जब तक कब्र में पांव नहीं चले जाते और अल्लाह की रजा का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, हम कभी अपने आप को मुतमईन ना समझें। कभी ना कहें कि हम तो बहुत अच्छे हैं जी, और कभी फख्र भी ना करें, वल्लाही हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। ये तो अल्लाह ने आपको मुझे यहाँ ला के बिठा दिया, हमारे अंदर थी ये खूबी? सच बताएं, जो खा के बैठे क्या ये हमारी शान थी? जो पहन के आए क्या ये हमारी औकात थी? जिन गाड़ियों पे बैठे बताइए, क्या ये हमारी कीमत थी? ये तो अल्लाह ने पोल हमारे छुपाए हुए हैं, अल्लाह ताला हमारे ऐबों को छुपाए ही रखे। खोटा माल किसी न किसी मरहले में अलग हो जाता है। और याद रखिए, बहाना कोई और बनता। वो ये नहीं कहता कि मैं अलग हो रहा हूं, वो कहता नहीं मैं बच गया हूं। ऐसी अकल पे पट्टी डालता है शैतान, ऐसी पट्टी बढ़ाता है और अकल पे पर्दा डालता है कि बंदे को सब गलत लगता है जो कल तक ठीक लग रहा होता था। और अपने अंदर का गिल्ट भी तो खत्म करना होता है ना। कैसे कहें कि ये काम छोड़ दिया जिसकी दावत कल तक दूसरों को देते थे? अपना खोट छुपाने के लिए लोग फिर ऐबचीनी करते हैं। सो मदीना का ये मरहला इब्तला सुनार की भट्टी का सा काम कर रहा था, खरे और खोटे मोमिन अलग हो रहे थे। यही दौर था कि जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से गिड़गड़ा कर दुआ की कि अल्लाह हमारे लिए मदीना को वैसा ही दिलकश बना दे जैसा मक्का को बनाया था और इससे भी ज्यादा। देखिए मक्का के लिए किसने दुआ की थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और आज भी आप देखिए कि ये जो दिल खिंचे हो जाते हैं ना मक्का और मदीना की तरफ, ये इन लोगों की दुआओं का नतीजा। कभी आपने नोट किया कि आप एक दो बार से ज्यादा एक ही जगह पे नहीं जा सकते, बोर हो जाते हैं। आप कहते हैं कि नई जगह चलते हैं, कोई नई चीज देखते हैं। मदीना आपको मुझे कोई अभी भी कहे तो उठ के जाने को तैयार है। वापिस आ रहे होते हैं, कहीं नहीं और जाने को दिल कर रहा होता, मक्का मदीना के लिए आपका फिर दिल करेगा, एक बार फिर ना देखो हरम को, फिर ना देखो, अच्छा एक और तवाफ करो, अच्छा जरा उस दरवाजे से देख। ऐसे बंदा चाहतियां मार रहा होता है कि पता नहीं मैं कोई चीज छोड़ आया वो देख लो। ये दुआओं का असर है। और आपका जिधर दिल ना लगे, मतलब आप क्लास में आते हैं ना, नहीं दिल करता आने को, गर्मी सर्दी बर्फ, आप रोए, दो नफिल पढ़े कि अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे, अल्लाह इस कोर्स को मेरे लिए दिलकश बना दे, अल्लाह इसके रास्ते की मुश्किलों को आसान कर दे। आप करके देखें, ये दुआओं का एक ऐसा गैर महसूस असर होता है कि इम्पॉसिबल पॉसिबल में बदल जाता है। कोई रुकावट है दुआ करें, अल्लाह मेरी ये रुकावट दूर कर। यकीन करें मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, पत्थर पे लिखे हुए की तरह बता सकती हूँ, जो रुकावट है वो आपका सहारा बन जाएगी। अपसेट डाउन, आप कहेंगे हुआ क्या, ये ऐसे कैसे हालात चेंज हो गए, ये आपकी दुआ कबूल हुई, ये आपकी तड़प लगी। जहां हम बैठ जाते हैं वो बस शैतान फिर हमारे दिलों में बोझ और गम और तकलीफ, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुमने तो मरना ही है, चलो अब यही है, अब चार दिन की जिंदगी है, नहीं आखिरी दिन तक नहीं मरना, मैंने मरने से पहले मैंने नहीं मरना, इस दर्जे का यकीन फिर इंसान के लिए मुश्किल को आसान कर देता है। फिर आपने एक और दुआ की मदीना के लिए, क्या कि हमारे लिए इसके पैमानों यानी गल्ले और पैदावार में बरकत अता फरमा, और इस पर आई हुई वबा को जोफा यानी मीकात है ये अहले शाम की तरफ, उनकी जानब मुंतकिल कर दे, यानी बंजर और वीरान जगहों पे इसको ले जा, लेकिन इस इलाके से बुखार बीमारी को दूर कर। इससे भी पता चलता है ना कि अगर शहर में या साथियों में कोई बीमारी फैली हो तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इससे हमको दूर कर दे। दूसरी तरफ आलम फकर फाका की कैफियत हर दर्जा तशवीशनाक थी, नई जगह आकर माशी जिंदगी की बुनियाद डालना और फिर इसमें कस्बे हलाल का एहतमाम करना, और वो भी इस आलम में जबकि एक तहरीक लम्हा लम्हा इनफाके माल के मुतालबात लिए सामने खड़ी हो। ऐसे हालात में जो इब्तला पेश आ सकता है वो जाहिर है, अलम बरदारा ने हक पर जो कुछ गुजरी इसकी दर्दनाक रुदात से तारीख सीरत और अहदीस के जखायर भरे पड़े हैं। हम तो कागजों में लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, आप सोचिए जिन जिस्मों के ऊपर ये मुसीबतें टूटी थी उनका क्या हाल होगा, फिर शर्म नहीं आती अपने ऊपर, रोना आता है हमें अपनी तन आसानी पे, हमें रोना चाहिए। अबू तलहा की कहानी सुनिए। हजरत अबू तलहा इस दौरे इब्तला का हाल यूं बयान करते हैं कि हम लोग भूख की मुसीबत में घुल घुल कर जब तंग आ गए तो सहारा हासिल करने के लिए सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, हाल बयान किया और पेट खोल कर दिखाए यानी ऊपर जो कपड़ा था उसको हटाया कि कई रोज के फाके की वजह से मैदे में होने वाली एक खास जलन को रोकने के लिए पत्थर बांध रखे थे। इस पर तारीख की अजीम तरीन शख्सियत ने अपने पेट से कपड़ा उठाकर दिखाया कि एक नहीं दो पत्थर बंधे थे। इस मंजर को देखकर अपना दुखड़ा बयान करने वालों की तसल्ली हो गई। हमारे पेट ज्यादा खाने से भरे रहते हैं, उनके पेट खाली थे, वो पेट के बाहर पत्थर बांधते थे, हमारा पेट अंदर से पत्थर की तरह सख्त होता है खा खा के। ये वो चीजें जिन्होंने आज हमें रोका। छोटी छोटी मजबूरी को हम अपने लिए फर्ज समझते हैं, क्या करें दुनिया के काम तो नहीं छोड़ सकते। मैं कहती हूँ जितनी दुनिया हमारी है ना आज, वल्लाह ही अबू बकर उमर उस्मान अली और ये सबकी होती ना तो वो इस्लाम मक्का की किसी गली में पड़ा होता जल बासी शक्ल में। ये इस्लाम की जो ताजगी आपको दिखती है ना दुनिया में, ये ऐसे लोग के जिनको परवाह ही नहीं, जो होगा होगा, मिला तो मिला नहीं तो ना सही, रखो अपने पास, आज अपना हाल पूछ लें कल ये स्कूल खाली होगा, सब चले जाएंगे। हाल तो किसी का ठीक नहीं होता, दुआ करें कि दिल की हालत ठीक हो। शैतान तो आपको कहेगा आपसे ज्यादा कोई मजबूर नहीं, आपसे ज्यादा कोई दुखी नहीं, आपसे ज्यादा कोई मुस्तहक नहीं, और जो आपको बुलाते कहते उनसे ज्यादा जालिम कोई नहीं। नेमते खाते और गुर्राते हैं। सच्ची बताऊं, मैं अपने आप पर लेती हूँ, मैं कहती हूँ हमारा हाल यह कि हम नेमते खा खा के नेमतों को पा पाकर हम भूल गए। आंखों पे इतने मोटे मोटे पर्दे पड़ गए, चर्बी आ गई आंखों पे, हमें नेमत अब नेमत ही नहीं दिखती, हक समझने लग गए। एक मरतबा इसी हाल में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु बेवकत आए और चाहा कि तस्कीन हासिल करने के लिए अपनी तकलीफ बयान करें, मगर फिर ख्याल हुआ कि इससे कायदे इस्लाम को ख्वाम खा मजीद परेशानी होगी। थोड़ी देर में हजरत उमर भी आ पहुंचे, वो भी इसी इम्तिहान का शिकार थे। आने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ अर्ज किया कि भूख के मारे बेताब हूं। देखिए हमारे घर तो पका हुआ खाना ना हो तो कच्चा भी बहुत है, हमारे पास स्नैक्स भी बहुत है, हमारे पास फ्रूट्स भी होते हैं, सब्जियां भी, फिर भी कहते हैं कुछ नहीं। सिर्फ चूल्हे पे पका हुआ खाना या फ्रिज में कोई बचा हुआ खाना ना दिखे तो हम कहते हैं घर में कुछ है ही नहीं। चार चीजें, क्या दूध खत्म हो जाए, ब्रेड खत्म हो जाए, कहते हैं सारी ग्रोसरी खत्म। वल्लाह की उसके बाद भी हमारे घर में इतना होता है कि हम मेरा हाल दो तीन हफ्ते चार हफ्ते भी ना लाएं तो गुजारा फिर भी हो सकता है ठीक, सिर्फ इधर से उधर करने की देर है। और इनका हाल था कि खाना छोड़े खजूर भी नहीं होती थी बस। और अबू बकर फिर उमर, खैर कहने लगे अल्लाह के नबी भूख से बेचैन हो। आपने ये सुना तो फरमाया मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। तय पाया कि अपने रफी के मकसद, ये नोट करें रफी के मकसद, एक दूसरे के रफी के मकसद बनेंगे ना तो एक दूसरे की जगह लेंगे, सहारा बनेंगे, और वरना तो इस दुनिया से जब जाएंगे तो शायद ही कोई हमारे इस दर्द को के बांटने वाला हो। खैर अबुल हैसम नाम के सहाबी उनके पास चलते हैं। अबुल हैसम बागात के मालिक और खुशहाल थे। तीनों अपने रफीक के यहाँ पहुंचे तो वो बेचारे खादिम ना होने के सबब खुद ही पानी लेने गए हुए थे। आए तो फरते मुसर्रत से लिपट गए और बाग में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और खजूरें तोड़कर हाजिर की। खजूरें खाकर इनफाका कुशान राहे हक ने ठंडा पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा करते और अबुल हैसम के लिए दुआए खैर करते वापिस हुए। हम उठते तो कहते खजूर के बाद अब क्या है, ये तो रोजा खोला है, अब आगे क्या है? कोई बुलाए और हमें सिर्फ खजूरें और पानी पिला दे और हम कहें टरखा दिया। इमेजिन तो करें, उनके लिए ये हालत खजूरों के खाने के लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी कि खजूर तो मिली, जरा सा हमें अपने खाने पीने को कम करना पड़ेगा फिर ही कोई काम कर सकेंगे। साथ भी नबी वकास ने एक मौके पर बयान किया कि तहरीके मोहम्मदी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं ही वो रुकन हूं जिसके हाथ से एक दुश्मन हक का पहला खून गिरा, मैं ही हूं जिसने जिहाद में अव्वलीन तीर फेंका। हम लोगों ने ऐसी हालत में जिहाद किया है कि हम दरख्तों के पत्ते और कीकर की फलियां खाया करते थे। को ला के रखे ना हमारे सामने पत्ते और कीकर की फलियां के खाओ, कहते इस वजह से मुंह के किनारे जख्मी हो जाया करते थे और इजाबत यानी जिस्म से जो गंदगी निकलती थी ऊंटों और बकरियों की मेंगनियों की शक्ल इख्तियार कर जाती थी। हम उन्हीं के साथ ही हैं, हम उसी तरफ से आए हैं, सोचिए जरा। हजूर के रफीके खास हजरत अबू हुरैरा का बयान है कि एक जमाना था कि जब मैं मिंबरे नबवी और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के दरमियान भूख और फाके की शिद्दत के मारे बेहोश पड़ा रहता था और लोग मुझको जुनून सदा समझकर बतौर इलाज पांव से मेरी गर्दन दबाते थे। हालांकि मुझे जुनून नहीं होता था, वो महज भूख का आलम होता था। हजरत अबू हुरैरा ही का बयान करदा एक वाकया ये भी है कि आप हजरत उमर के साथ साथ चले जा रहे थे और किसी आयत का मफहूम जेरे बहस था। बातें करते करते और साथ चलते चलते यकायक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बेहोश होकर गिर पड़े। फाका कशीक ने नौबत यहां तक पहुंचा दी थी। देखिए इनका सबर, कुछ लोगों का सबर कितनों के लिए नेमत बन गया। जी, और आप देखिए जो हमारे घरों में बच्चे हैं छोटे, अगर हमने उनको ये कहानियां सुनाई हो तो उनके अंदर भी तो थोड़ा सी आजजी आएगी ना, कैसे वो जैसे जुर्माना लेने आते हैं उनकी तरह हमारे बच्चे तकाजे करते हैं, हम घर में ही नहीं जाएंगे अगर आप हमारी पसंद से चीज नहीं लेंगे तो फिर आगे से हमने काम क्या लेने हैं, ये सोचने की बात है। लेकिन बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे शऊर को जिंदा कर दे। इंशाल्लाह इसे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ल इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तूब इलैना इन्नका अंतत तवाब रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।